कोसारी के रहने वाले थे हमारे हाफिज देला, हाफिज देला, हाफिज देला जो थे हजरत वाला मदनी रहमतुल्लाह अलैह के सोहबत मजाज थे। किसके मजाज थे? हाफिज मदनी रहमत अल्लामा हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के सोहबत मजाज थे हाफिज देला, हाफिज साहब थे। इन्होंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापुद्रवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जब फारिग हुआ, मौलाना अब्दुल्ला साहब कापुद्रवी जो गुजरात वाले हैं हिंदुस्तान वो जानते हैं, हमारे यहाँ भी तशरीफ लाए हैं, तो कहा कि मैं नया नया फारिग होकर आया था, तो मुझे पता चला कि हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कौसाड़ी आने वाले हैं, ये उनके जो सोहबत मजाज हाफिज़ देला थे उनके यहाँ। तो मैं तो बिल्कुल नौजवान और यंग आदमी था, तो मैंने हाफिज़ साहब से कहा कि मैं हज़रत के साथ सोना चाहता हूँ रात में, मैं हज़रत के साथ क्या करना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ। मौलाना अब्दुल्ला साहब कापुद्रवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तो कहा कि तू सोना लेकिन खांसना मत रात में। हाफिज़ साहब ने कहा कि खांसना मत, हज़रत की नींद ख़राब होगी। तो कहा कि मेरा मकसद तो ये था कि मैं हज़रत के मामूलात देखूँ, कुछ हज़रत की खिदमत करूँ, हज़रत तहज्जुद के लिए उठे तो मैं कुछ वुज़ू का पानी लाकर दूँ, कुछ खिदमत का मौका मुझे मिल जाए। तो कहा कि उन्होंने मुझे कमरा बता दिया कि ये कमरा है कि यहाँ पर हज़रत सोने वाले हैं। तो मौलाना अब्दुल्ला साहब फरमाते हैं कि बेहतरीन वो बिस्तर बिछा हुआ था, बेहतरीन बिस्तर बिछा हुआ था। तो मैं वहाँ चला गया कि हज़रत के आने का इंतज़ार करने लगा। तो हज़रत रात में तशरीफ़ लाए हज़रत हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो हज़रत ने पहली बात तो कही कि भाई ये बिस्तर हटा लो, क्योंकि हज़रत की आदत ही थी हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के अपना बिस्तर साथ में रखते थे। सुन्नत के मुताबिक हज़रत का जो बिस्तर होता था वो चमड़े का बिस्तर होता था, उसमें वो घास फूस भरे हुए होते थे, वो बिस्तर हमेशा साथ में लेकर चलते थे हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह। तो कहा कि ये बिस्तर हटा लो, और हज़रत ने ये बिस्तर हटवा लिया और अपना जो चमड़े का बिस्तर था वो बिछवा दिया वहाँ पर। वो तो कहा कि हज़रत भी सो गए, मैं भी सो गए। अब मेरी तमन्ना तो ये थी कि मैं उठता और हज़रत के लिए कुछ पानी वगैरह का इंतज़ाम करता। वो कहा कि मेरी तो ऐसी आँख लगी है, ऐसी आँख लगी है कि मैं तो उठ ही नहीं सका। हज़रत अब्दुल्ला साहब फरमाते हैं लेकिन जब मेरी आँख खुली है तो मैंने तो देखा कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ऑलरेडी मुसल्ले पर बैठे हुए हैं, और कहा कि ऐसी हिचकियाँ बंधी हुई है, ऐसे रो रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला साहब फरमा रहे हैं कि जो हदीस के अंदर जो अल्फाज आए हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जब रोते थे, नबी अलैहिस्सलाम जब रोते थे उम्मत के गम में, अल्लाह ताला से मांगते थे और रोते थे, तो जो हदीस के अंदर जो कैफियत बयान की गई है ना, कि ऐसा लगता है जैसे कि हांडी जोश मार रही है, हांडी के ऊपर कोई खाना पक रहा हो और वो बिल्कुल गर्म हो चुकी है, उबल रही है, तो उबलने की वजह से जो आवाज़ आती है ना। तो कहा कि उस हदीस का मतलब मैंने जब हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को रोते हुए देखा तब मुझे समझ में आया कि नबी अलैहिस्सलाम की जो रोने की कैफियत जो थी हांडी उबलने की, तो ये थी। ऐसे हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह रोते। तो ऐसे गाँव में पैदा हुए मौलाना गुलाम साहब अस्तानवी, छोटे से गाँव में 1950 के करीब, और शुरू की तालीम अपने गांव वगैरह में हासिल की। फिर उनके वालिद साहब उन मूव हो गए तो वस्तान चले गए। वस्तान 15 गांव का एक, यानी 15 घरों घर का एक गांव, 15 या 20, उससे ज़्यादा उसमें यानी इतना ही गांव है कि वहाँ 15 या 20 गांव, 15 या 20 मकानात है, उससे ज़्यादा नहीं, वहाँ मूव हो गए। फिर अपनी तालीम वगैरह हासिल की उन्होंने, तरकेसर वगैरह के अंदर फरागत हासिल की। तो शुरू के ज़माने से उनको हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापुद्रवी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी उन्स थी, मोहब्बत थी, हज़रत की बड़ी खिदमत फरमाते थे, क्योंकि हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापुद्रवी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो तरकेसर के मोहतमीम थे, वहाँ के प्रिंसिपल थे, वहाँ के क्या थे, प्रिंसिपल थे। तो लोग मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह को ये कहते थे कि ऐसा लगता है कि तुम तो मौलाना के घर के आदमी हो। जैसे कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक हदीस में आता है कि नबी के घर में इतनी कसरत से जाते थे, इतनी कसरत से जाते थे, उनका आना जाना नबी के यहाँ इतना रहता था कि सहाबा के यहाँ कन्फ्यूजन होती थी। सहाबा ये सोचते थे कि कहीं अब्दुल्लाह इब्ने मसूद नबी के घर के आदमी तो नहीं। तो मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी का भी मामला यही था, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापुद्रवी के यहाँ बहुत जाते थे क्योंकि उनके खादिम थे। तो तलबाओं से मजाक करते कि ऐसा लगता है कि तुम तो उनकी फैमिली के आदमी हो। तो कहा कि मैं हूँ नहीं, बिल्कुल पक्की बात है कि मैं उन्हीं के बेटों में से एक बेटा हूँ। हज़रत ने उनकी बड़ी तरबियत फरमाई, वहीं से फारिग हुए तरकेसर से मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब और अपने जितने बड़े बड़े असाथे मौलाना शेर अली ख़ान साहब, इनसे इन्होंने पढ़ा। मौलाना गुलाम साहब का पढ़ने में बिल्कुल मुतवस्सित, लेकिन असाथे की खिदमत में सबसे आगे, दुआएँ लेने में सबसे आगे। حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے گھر کا سارا کام خود کرتے تھے. مولانا ذوالفقار صاحب, سید مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ساری خدمت حضرت فرماتے, مولانا غلام صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ. فراغت کے بعد سہارنپور گئے, شیخ ہندو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں لی, اس سے پہلے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں لی, شیخ زکریا کا زمانہ انہوں نے پایا, شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عاقل صاحب, سب کی خدمت دیکھی. عجیب بات کہ جب ترکیسر سے فراغت وغیرہ ہو گئی, پھر جا رہے تھے حضرت مفتی بیمات صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گجرات کے, تو چونکہ ان کا تعلق تھا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے بہت زیادہ, تو جب سہارنپور جانے لگے تو مولانا غلام صاحب وستانوی جو ہے نا وہ مفتی بیمات صاحب کے یہاں تشریف لے گئے. مفتی بیمات صاحب کے یہاں تشریف لے گئے. کیوں تشریف لے گئے؟ جا کر مشورہ کرنے کے لیے. کیا مشورہ کیا کہ حضرت میں سہارنپور جا رہا ہوں شیخ کے پاس. کس کے پاس؟ شیخ یعنی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ حیات. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں حضرت کے لیے کیا ہدیہ لے جاؤں, میں حضرت کے لیے کیا ہدیہ لے جاؤں. دیکھو یہ طریقہ ہے, یہ کیا ہے, بزرگوں کے پاس جب انسان جاتا ہے تو الگ تب اٹھا پٹنگ کی چیزیں نہ لے کے جائیں, تو وہ حضرت کو پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت کو قریب سے دیکھا ہے, تو کہ میں حضرت کے لیے کیا ہدیہ کیا لے کے جاؤں. تو مفتی بیمات صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا غلام صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کرو کہ شکر لے کے جاؤ, شوگر, شکر کا جو پیک ہوتا ہے نا وہ لے کے جاؤ. یہ مشورہ نہیں کہ حلوہ لے کے جاؤ, عطر لے کر جاؤ, اور یہ لے کر جاؤ, وہ لے کر, مینگو لے کر جاؤ. کہا کہ شوگر لے کے جاؤ, شکر لے کے جاؤ. تو کہا کہ بزرگوں کی بات سر آنکھوں پر, میں تو پوری وہ شوگر کی جو پیک ہوتی ہے وہ لے کے گیا, شوگر کی پیک لے کے گیا, اور جا کر فوراً ہی حضرت سے ملاقات کی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے, وہ شوگر کا پاکٹ حضرت کے سامنے پیش کر دیا. تو کہا کہ حضرت اتنے خوش ہوئے, شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ شوگر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. کہا کہ دیکھو بھائی یہ کام کی چیز ہے. کہا کہ لوگ مٹھائی لاتے ہیں اور یہ لاتے ہیں, وہ میں کسی اور کو کھلا دیتا ہوں, میرے کام کی تو ہے نہیں, میں تو کھاتا نہیں اتنی چیزیں, چونکہ حضرت کے مہمان بہت کثرت سے آتے ہیں. شیخ کی مجلس اگر آپ نے آپ بیتی پڑھی ہو تو دیکھا ہوگا کہ حضرت کا تو کوئی دسترخوان مہمانوں سے خالی نہیں ہوتا تھا, صبح شام مہمان, صبح شام مہمان, مہمان. تو اب جتنے مہمان آئیں گے اتنی کیا بنے گی؟ چائے بنے گی. تو چائے میں کیا چاہیے ہوگی بھائی؟ شوگر, شوگر چاہیے ہوگی. تو ایسی چیز لے کر گئے تو جو کام میں آنے والی چیز ہے, پریکٹیکل چیز ہے نا. اگر میں آپ کو کہوں گی بھائی کسی کے لیے شوگر لے کے جاؤ, آج کا اگر کوئی شوگر لے کر آئے گا تو پھر آپ کو کیسے کیسے القاب ملیں گے, ماشاء اللہ, ہے کہ نہیں, یہ شوگر لے کے آئے. تو ہر ایک اسے معلوم ہوا کہ بھائی ہدیہ میں وہ چیز دینی چاہیے جو انسان کے کسی کام کی ہو, پریکٹیکل چیز ہو, اس کے کام میں آنے والی چیز ہو. آپ کسی گنجے کو اگر کنگھی ہدیے میں دیں گے, کوئی گنجے انسان کو آپ نے کنگھی ہدیے میں دی تو وہ کنگھی کا کیا کرے گا؟ اس کے کوئی کام کی ہے وہ ڈائبٹیز کے کوئی مریض کو آپ نے امبا لا کر اتنا بڑا باکس دے دیا, اب وہ تو کھانے والا ہی نہیں, وہ کیا کرنے والا ہے؟ تو یہ سب آرٹ ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ بزرگوں کے پاس ملتی ہیں. یہ چیزیں کتاب یعنی یہ اکیڈمک چیزیں نہیں ہیں, یہ ساری پریکٹیکل چیزیں ہیں. وہ جو کہاں ملتی ہیں ہم کو بھائی؟ بزرگوں کے پاس ملتی ہیں. مولانا غلام صاحب استانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے بیعت تھے, مولانا حضرت جب تک حضرت حیات رہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہاں تک حضرت سے بیعت تھے, حضرت سے مشورے وغیرہ کرتے تھے, حضرت کی دعائیں لیتے تھے. تو کہا کہ حضرت بہت خوش ہوئے اور حضرت نے دعائیں بھی. مجھے اصل یہ بتانا ہے مولانا غلام صاحب نے جو کام کیا ہے وہ, لیکن اتنا بڑا بننے کے لیے ہمیں کن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے, ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ساری چیزیں کیا ہوتی ہے بھائی, انسان کتابوں کے ذریعے نہیں لے سکتا ہے, ساری چیزیں کتابوں میں ملتی نہیں ہیں. بہت سی مرتبہ اللہ والوں کی نگاہیں وہ کام کر جاتی ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو دیکھے, اپنی حقیقت کو دیکھے, تو انسان کو وہ کام کرنا اس کے لیے محال اور امپوسیبل لگتا ہے کہ اتنا بڑا کام. لیکن بزرگوں کی توجہ اور ان کی جو نظر انتخاب کسی کے اوپر پڑ جاتی ہے نا, وہ انسان کو بڑھا دیتی ہے. مولانا غلام صاحب استاد نے فرمایا تھا ایک مرتبہ حضرت شیخ کے پاس عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بزرگوں اثر کے بعد ان کی مجلسیں ہوتی ہیں, शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ भी असर के बाद तलब आ जाते थे, हम वहाँ जाकर बैठते थे, शेख यहाँ बैठे हुए थे। तो बाद बाद में हज़रत ने फरमाया, ये यूपी की ज़बान है, जल्लाबाद के बेर कौन खिलावे, जल्लाबाद के बेर, बेर जानते हैं ना हमारे गुजराती में उसको बोर कहते हैं, उर्दू में उसको बेर कहते हैं, ये फारुख बदस में मिलते हैं आजकल, आप अभी पता नहीं सीज़न है कि नहीं, बेर जिसको कहते हैं। तो वहाँ जलालाबाद के बेर जो है बड़े मशहूर है, जलालाबाद के बेर बड़े मशहूर है बोर। तो क्या जलालाबाद के बेर कौन खिला रहे, तो वो यूपी की ज़बान है कि भाई ये जलालाबाद के बेर कौन खिलाएगा। तो मौलाना फरमाते हैं कि अब हर एक उसको सीरियस नहीं लेता है कि भाई हज़रत ने वैसे ही मजाकन कहा होगा। मौलाना गुलाम साहब फरमाते हैं कि मेरे दिल में बात आई यार कि हज़रत को बेर खाने का मन है, तो मैं असर के बाद बस लेके निकल गया, मैं असर के बाद बस लेके निकल गया, सहारनपुर से बस पकड़ी और जलालाबाद गया। तो चूंकि शाम पहुंचते हुए मुझे रात हो चुकी थी, सुबह जल्दी मैंने वहाँ के लोगों से पूछा और किसी के खेत में गया और वहाँ से मैंने वो टोकरा लिया पूरे बेर का, और वहाँ से फिर बस पकड़ के जोहर तक मैं वहाँ पर आ गया, सहारनपुर वापस आ गया। और जोहर के बाद जब हज़रत की मजलिस हुई तो मैंने वो जोहर के बाद वहाँ जहाँ हज़रत बैठते हैं वहाँ जाकर वो टोकरा बेर का रख दिया, वो बेर वहाँ जाकर मैंने क्या कर दिया, रख दिया। हज़रत आए, हज़रत ने देखा तो कहा भाई ये बेर कौन लाया, तो ये तो कल की बात है हज़रत ने, तो कहा मौलाना गुलाम साहब ने वहाँ के लाया। तो वो हज़रत ने वहाँ की ज़बान में फरमाया कि लौंडे ने मुराद पूरी कर दी, लौंडे ने दिल की मुराद पूरी कर दी। मौलाना फरमाते हैं कि शेख मुझे इस तरीके से देखते रहे, लौंडे ने मुराद पूरी कर दी। कहा कि देखते रहे देखते रहे, मैंने सोचा कि मुझे उसी वक्त हजरत की ऐसी तवज्जो लगी है कि मैंने सोचा कि मेरा काम बन गया, मेरा बेड़ा। फिर हजरत का तो तकरीबन 82 में इंतकाल हो गया, उसके बाद हजरत मुंसलिक हुए किसके पास, कारी सिद्दीक साहब बांदी रहमतुल्लाह अलैह से। और ये बुजुर्गों की तवज्जो की नज़र भाई, इनकी उल्टी भी सीधी होती, इनकी उल्टी भी क्या होती, इनकी हर चीज इनकी निगाहों में भी बरकत होती है। इसलिए मैंने एक मरतबा जुमा में भी कहा था कि बहुत से मरतबा इंसान हमारे बुजुर्गान किराम आते हैं तो इसलिए नहीं बैठते हैं, कहा कि हमको जबान नहीं भाई, ये इनका जो मामला होता है ना, इसका इनसे इस्तिफादा जबान के ऊपर मुनहसर नहीं होता है, वहां आप चुपचाप भी बैठे रहो, चुपचाप भी इंसान बैठा रहे तब भी इंसान को कुछ ना कुछ मिल जाता है भाई, कुछ ना कुछ मिल जाता है। इनकी निगाहों में अल्लाह ने चीज़ें रखी होती है भाई, इनको अल्लाह ने बाबरकत बनाया होता है, ये जिसके साथ भी कनेक्ट होते हैं ना, ये नेक सोहबत का असर होता है। हमारे शाह अब्राउल हक हरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे ना कि भाई कि क्या होता है कि आपने देखी होगी कि वो टो ट्रक जो होती है ना, टो ट्रक होती है, तो अगर आपकी कार क्या हो गई है, ब्रेक डाउन हो गई है, हमारी सारी गाड़ियाँ क्या है, ब्रेक डाउन है, क्योंकि हम इतनी नेकी नहीं कर सकते जितनी वो करते हैं, जितनी आहोजारी वो करते हैं, जितनी तहज्जुद, जितना मुजाहदा वो करते हैं, हम नहीं कर सकते। अब इंसान है किसी की कार ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, आप टो ट्रक को बुलाएं, वो आपको लटका के जहाँ चाहे लेना चाहे पहुँचा देगी कि नहीं भाई, आप गाड़ी में भी बैठे हुए हैं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वो सारा ट्रक वही काम कर रही है क्योंकि उसके पास इतना पावर है। तो ये नेक सोहबत का ये असर होता है कि अगरचे हमारे पास इतना पावर नहीं है लेकिन उनके पास अल्लाह ने इतना पावर रखा है कि आप कुछ भी ना करें तब भी वो आपको अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देते हैं, ये नेक सोहबत का असर। एक जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक इंसान आया कि हजरत हज में जाने की बड़ी तमन्ना है लेकिन वसाइल नहीं है, असबाब नहीं है, वसाइल नहीं है, असबाब नहीं है। तो हज़रत ने उसको एक दिरहम दिया, कहा के लिए हज पढ़ ले, हज़रत ने उसको क्या दिया, एक दिरहम दिया कि ले हज पढ़ ले। तो कहने लगे कि हज़रत एक दिरहम में हज कहाँ से होगा, कहा कि जब पढ़ ले। तो वो क्या है कि मैं हज़रत वहाँ से हज़रत के पास से निकला हूँ तो कहा कि मैं किसी गुजरगाह के ऊपर खड़ा हुआ था तो एक काफला आ रहा था। तो काफले वालों ने मुझे उस रास्ते पर देखा तो कहा कि भाई यहाँ पर क्यों खड़े हो, तो कहा कि मुझे हरमेन का आज़म करता हूँ लेकिन क्या नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है। तो तो काफले वालों ने कहा कि हम लोग वहाँ से जहाँ से चले थे हम लोग, तो कहा कि हमारे पास ये सारे वसाइल, हमारा एक आदमी था जो रास्ते में फौत हो गया, उसका ऊँट भी हमारे पास है, उसका सामान भी हमारे पास मौजूद है, उसका ऊँट भी हमारे पास है, उसका सामान भी हमारे पास है, अगर आप आना चाहते हो तो आप उसका ऊँट ले सकते हो। वो इंसान कहते हैं कि वो हजरत का दिया हुआ दिरहम लेके मैं उस ऊँट के ऊपर सवार हो गया, उसी का सारा सामान मैं इस्तेमाल करता रहा, उसी के ऊँट पे मैं सवार होते रहा, पूरा हज मैंने किया है और वो दिरहम मेरे पास वैसा का वैसा ही रहा। यहाँ अकल क्या हो जाती है, यहाँ अकल इनकी उल्टी भी सीधी होती है, जो एक मरतबा कह देते हैं अल्लाह क्या कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने मुजाहदे किए होते हैं, अल्लाह इनकी हर बात की क्या कर लेता है, लाज रख लेता है, अल्लाह इनकी बातों की क्या कर लेता है, लाज रख लेता है। तो शेख हजमाना साहब गुलाम साहब फरमाते थे कि भाई कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे हजरत की निगाह लग गई और मेरा क्या हो गया, काम बन गया, मेरा काम बन गया। और अल्लाह ने कैसा काम लिया भाई, अकल कुआ जहाँ हजरत ने मदरसा कायम किया ना, तकरीबन उस ज़माने के अंदर जब हजरत 1979 में हजरत ने मदरसा कायम किया था, 1979 के अंदर अकल कुआ के अंदर 6 तलबा 1 उस्ताद के साथ। उस वक्त कंठारिया के अंदर जो पाकिस्तान के मशहूर खतीब मौलाना अब्दुल मजीद नदीम साहब, मौलाना अब्दुल मजीद नदीम साहब, उनको वो हिंदुस्तान कंथारिया वालों की दावत पर तशरीफ़ लाए थे, तो ये अक्कल कुआ तशरीफ़ ले गए थे, तो वहाँ देखा तो 6 तलबा 1 उस्ताद और आजू बाजू बिल्कुल जंगल और पहाड़ है और कुछ भी नहीं। तो उन्होंने ये तकरीर छपी हुई है, ये तकरीर छपी हुई है, तो मौलाना अब्दुल मजीद नदीम रहमतुल्लाह अलैह ने साहब ने जो अपना बयान शुरू किया था वो इस आयत से शुरू किया था, गैरी दी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की बुनियाद ऐसी जगह में रखी थी जहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इसी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना गुलाम साहब आपने ऐसी जगह में ये मदरसा कायम किया है कि यहाँ तो पहाड़ के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन उस बंदे का इखलास था, बुजुर्गों की दुआएं थी कि जो काम उन्होंने किया वो तआवनु अलल बिर्र वत्तक़्वा, पूरी उम्मत के ऊपर कहा कि 50 में पैदा हुए, 25 में इंतकाल किया, 75 साल की उम्र पाई, लेकिन कितना काम किया है। अगर पूरी मुग़ल सल्तनत को आप कैलकुलेट करें, जितने मुग़लों ने जितना काम किया ना, इस अकेले बंदे ने इतने साल में इतना काम किया है। कितने मदरसे बनवाए, कितने दारुलूम्स बनवाए, 128 दारुलूम्स ये इनके मातहत चलते हैं, 128, उसमें से 28, तो सिर्फ 28 दारुलूम्स तो वो थे कि जो खुद लड़कियों के, और लड़कियों के उन्होंने ज़्यादा मोमिना क्लासें बनाई, उन्होंने आलिमा क्लास बहुत कम बनाई, कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्चियाँ मोमिना बने, मेरी बच्चियाँ क्या बने, मोमिना बने। 128 दारुलूम, और जो अक्ल कुआ की जो मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर 6 बच्चों से उन्होंने शुरू किया था, आज वहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं, 12,000 बच्चे पढ़ते हैं, 6 बच्चों से शुरू किया था। और फरमाते थे कि मेरा असल मकसद तो दीनी तालीम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दीनी माहौल में रहकर मेरा आलिम इतना इलम हासिल करे कि वो किसी दुनियादार की आँख में आँख डाल के बात कर सके, वो अपने आप को छोटा ना समझे। इसलिए उन्होंने अक्ल कुआ के अंदर एक ही बाउंड्री के अंदर मकतब, हिफ्ज, आलिमिया, इफ्ता, काजी और दुनिया के जितने शोबे हैं, एक ही बाउंड्री के अंदर आप टीचर भी बन सकते हैं, आप लॉयर भी बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं, मर्द भी बन सकते हैं, औरतें भी बन सकती हैं, सारा एक ही बाउंड्री के अंदर। सारी बीएड कॉलेज हैं, डीएड कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज हैं, वहाँ पर बी फार्म है, डी फार्म है, एम फार्म है, जो करना है आप करें, आप आलिम बने, आप जो बनना है आप बने, एक ही बाउंड्री के अंदर 12,000 बच्चे। ये अल्लाह का बंदा मौलाना गुलाम समझता है, 128, ये तो एक की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा 128, और कितने मकतब बनाए उन्होंने, जो अक्ल कुआ के अंदर रन होते हैं, 2400, 2400 मकतब जो इसके अंदर चलते हैं, और जो इनके तवस्सुत से जो मस्जिदें बनी हैं 7000 से ज्यादा, 7000 से ज्यादा। ये बुजुर्गों की तवज्जो नहीं था और यह है, लेकिन अल्लाह ने मकाम दिया था इनको। खास फरमाते थे, इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके गया, लेकिन आप यकीन करें जब इंतकाल हुआ ना, इंतकाल हुआ, क्योंकि उनके बेटों से हमारे रवाबित, हमारे रिश्तेदारी है, विरासत में क्या छोड़ के गए? एक पैसा नहीं। उनके बेटे कह रहे हैं कि तकसीम करने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके तकसीम करने के लिए कुछ भी नहीं है, मकान भी नहीं, अपने नाम पर एक भी चीज नहीं। ऐसा इंसान, सारी चीज अक्ल को माफ, इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है। हमारे यहां वसूल में भी आकर गए हैं, जब शुरू शुरू में मदरसा शुरू किया तो चंदे के सिलसिले में यहां पर तशरीफ लाए थे, तो जब भी मेरी मुलाकात से होती थी, मौलाना अब्दुल साहब को बड़े याद करते थे। मुख्य मौलाना अब्दुल साहब को बताना कि मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने कहा कि क्यों हज़रत? तो कहा कि जब मैं पहली मरतबा यहाँ पर आया था तो उन्होंने रात में मुझे किसी बुड्ढे के साथ सुलाया था, जो पूरी रात बीड़ी पीता रहता था, न खुद सोया ना मुझे सुने दिया। तो मैं मौलाना अब्दुल अव्वल को कहता हूँ कि मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा, तूने पूरी मेरी रात बिगाड़ी। वो मजाकन कहते थे, लेकिन उनकी एक खास सिफत थी, अपने मोहसिनीन को कभी भूलते नहीं थे। जब यंग उम्र में उन्होंने मदरसा शुरू किया तो सिमलक के अंदर मौलाना अब्दुल हक मियाँ होते थे, तो वो लोग उनको मस्जिद बनाने के लिए देते थे, तो वो उनके पास मस्जिद के लिए तशरीफ़ ले गए थे। कहा कि हज़रत मैंने ये मदरसा शुरू किया है, तो मुझे एक मस्जिद की ज़रूरत है। तो कहा कि मैं बिल्कुल नौजवान, दो तीन मेरे दाढ़ी के बाल थे, तो उन्होंने मुझे भगा दिया कि तू क्या मदरसा चलाएगा, ये दो तीन दाढ़ी के बाल, वो भगा दिया था मुझे। अल्लाह ने इतना काम लिया हमसे भाई, अपने मोहसिनीन को कभी नहीं भूलते थे। बल्कि मैंने यहाँ तक पढ़ा, सहारनपुर में वो रहे थे, तो जिन असातिज़ा से उन्होंने पढ़ा, तो एक दिन उनका ख़त आया सहारनपुर कि मैंने जिन जिन असातिज़ा से पढ़ा है, जिन जिन असातिज़ा से मैंने पढ़ा है, उन असातिज़ा का मुझको रिकॉर्ड चाहिए कि वो असातिज़ा आपके यहाँ कितने सालों से पढ़ा रहे हैं और उन्होंने कितनी तनख्वाह, कितनी वेजिस आपसे लिए है। तो मदरसे, चूँकि मौलाना गुलाम साहब तो माशाल्लाह बड़े बन चुके हैं और मौलाना का खुद दारुल देवबंद के शुरा में है, इतना बड़ा एम्पायर चला रहे हैं और खुद दारुल देवबंद के क्या है, शुरा के रुकने शुरा है, सहारनपुर की शुरा के अंदर है। हजरत का ख़त आया कि भाई जिन जिन असातिज़ा के पास मैंने पढ़ा है, उन असातिज़ा का रिकॉर्ड मुझे चाहिए कि वो कितने सालों से आपके यहाँ पढ़ा रहे हैं, कितने सालों से आपके यहाँ पढ़ा रहे हैं और उन्होंने आपके यहाँ से कितनी तनख्वाहें ली हैं। तो जब मदरसे वालों ने सारा हिसाब कहा कि, और ये सहारनपुर और देवबंद की ये खसूसियत है, वहाँ अगर आप 100 साल पुराना कागज़ मांगेंगे तो मिल जाएगा, सारी चीज़ें इनकी लिखी हुई कागज़ों के अंदर, इनकी लाइब्रेरी के अंदर, इनके मुनीम और इनके जो हकीम होते हैं, वो मुंशी जो होते हैं, इनके पास सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो मदरसे वालों ने सारा हिसाब करके दिया कि आपके असातिज़ा ये हैं और इतना इतना इनको ये वेजेस मिले हैं। तो मौलाना ने जब इनके पास टोटल आया तो अपने सारे असातिज़ा का वो वेजेस मदरसे को वापस कर दिया, ताकि मैं कयामत, यानी मैं अपने असातिज़ा का एहसान तो नहीं चुका सकता, लेकिन ये कम अज़ कम मेरी तरफ से कोशिश है कि मेरे असातिज़ा अल्लाह के यहाँ जाए तो वो गोया कि इस तरीके से जाएंगे कि उन्होंने फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के लिए पढ़ाया, सारे असातिज़ा का वो पगार उन्होंने वापस लौटा दिया। रोते थे रातों में, कहा कि मेरे ऊपर किसी ने मामूली भी एहसान किया है तो रातों में उसके लिए उठ उठ के दुआ मांगते थे। ये तो आज हम लोग क्या है भाई, हम एहसान फरामोश लोग हैं। असल तो ये कि एहसान हमारे ऊपर कोई थोड़ा हो गया कि मुझे अगर किसी ने एक पाउंड से एक इससे भी मुझे ये किया है तो उसके लिए रातों को उठ उठ के रोते थे, एहसान। इसलिए जहाँ पर यह आता है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा हारून अलैहिस्सलाम को कि जाओ फिरौन के पास, और क्या कहा, कौलन लयीना, नरमी से बात करना उसके साथ, नरमी से बात। हालांकि वो तो खुदाइयत का दावा कर रहा है, वो तो क्या कर रहा है, खुदाइयत का दावा करने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कह रहे हैं कि उनके साथ नरमी से बात करना। तो हमने अपने असातिज़ा से सुना کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نرمی سے بات کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ وہ خدائیت کا دعویٰ کر رہا ہے, تو یہ معاملہ میرے ساتھ ہے, یہ معاملہ میرے ساتھ ہے. لیکن اے موسیٰ, تو نے فرعون کے گھر کا نمک کھایا ہے. فرعون کے گھر کا کیا کھایا ہے؟ نمک کھایا ہے. بھائی موسیٰ علیہ السلام تو وہیں بڑے ہوئے ہیں نا, چھوٹے بچپن میں تو وہیں تھے. وہ کہا کہ تو نے ان کا گھر کا نمک کھایا ہے. تو نبی کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ احسان فراموشی کرنا یہ مومن کا کام نہیں. اگر تمہارے ساتھ کوئی ایک احسان کرے, اس احسان کو بھولو مت. اسی لیے یہ دیکھیں نا کہ وہ ابو لہب جو ہے, ابو لہب ہے, تو ابو لہب نے نبی کو بد دعا دی, تبن لک یا محمد الہذا جمعتنا, کہ تو ہلاکت ہو, تیرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے, تو نے اس لیے نعوذ باللہ تو نے اس لیے جمع کیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بد دعا اتاری, ابو لہب نے بد دعا دی جی. تو اصل کیا ہونا چاہیے تھا؟ نبی کو کہتے کہ کل تبت جدا, نبی آپ کہہ دیجئے کہ تیرے ہاتھ پہ پاؤ ٹوٹے, تیری ہلاکت ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ امت کو تعلیم دیا کہ یہ تیرا چچا ہے, ابو لہب جیسا بھی ہے لیکن تیرا چچا ہے. احسان فراموشی, احسان فراموشی, انہوں نے تو یہی تو وہ تھے نا, وہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر باندی کو آزاد کیا تھا. تو احسان ہے تمہارے اوپر, احسان فراموشی کرنا یہ تمہارا کام نہیں ہے, آپ بھی اس سے ہٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کل کو نکال دیا, اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی بدعا نازل فرمائی, تب یدا ابی لہب متب. یہ ان کی خاص صفت تھی کہ اپنے احسان محسنین کو کبھی بھول دے. کیا کام کیا بھائی آج اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کے اوپر؟ میں نے کہا نا کہ حدیث اس کے اوپر چلی تھی کہ بھائی آپ نے کسی کے لیے مینس بنا دی, اب وہ مینس یوز کرے کہ وہ انسان جہاد میں گیا تو اس جہاد کرنے والے جو اس کو ثواب ملے گا, جو مینس دینے والا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. انہوں نے امت کو تعلیم کا مینس دیا, انہوں نے امت کو کالجز دی. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا, معمولی غریب گھر کے پڑھنے والے ہوشیار بچے ہیں, انہوں نے کئی کئی مارکس لیے ہیں, کئی 80-80% 70-70% انہوں نے سائنس میں لیے ہیں, لیکن اسباب نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں, کہاں جا کے پڑھیں گے؟ مولانا کے پاس آتے ہیں, پڑھ لو. ان کے کالجز میں بچے پڑھے, ابھی ایم بی بی ایس کالج کھول کے گئے جانے سے پہلے, ایم بی بی ایس کالج میڈیسن, مولانا غلام صاحب. اور نیت کیا تھی کہ میرے یہ بچے کم از کم اتنی تعلیم یہاں سے حاصل کر کے نکلے کہ لوگ, دنیا دار جو لوگ ہیں, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ باتیں کر سکیں, یہ تعلیم حاصل کریں. کئی کئی امت کے پیچھے بڑے بڑے ٹیچرز چھوڑ کے گئے, ڈاکٹرز چھوڑ کے گئے, لوئرز چھوڑ کے گئے, اور یہ آج امت کے لیے بھائی فائدہ مند ہے نا. تو ان کا ثواب کس کو ملنے والا ہے؟ ان کو ملے, کتنی تعلیم. اور حدیث میں ایک اور چیز بھی بتائی گئی کہ من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا. اچھا, ایک انسان اللہ کے راستے میں گیا, اس کو آپ نے اسباب بھی دے دیے, ٹھیک ہے, لیکن فرمایا کہ اس کے جانے کے بعد اس کی فیملی کی اگر کوئی لک آفٹر کرتا ہے, پر وہ تو اللہ کے راستے میں گیا ہے نا, اب بچے پیچھے ہیں, بیوی پیچھے ہیں, خاندان پیچھے ہیں, تو فرمایا کہ جو اس کی لک آفٹر کرتا ہے اس کو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے, کیونکہ آپ نے اس کے دل کو فارغ کر دیا. ایک انسان چلو بیچارہ اس حالت میں نہیں تھا, کچھ پیسے اس نے بچا کر رکھے تھے, اللہ کے راستے میں نکل گیا, لیکن گھر بار پیچھے چھوڑ کے گیا, اہلیہ ہے, بچے ہیں, فیملی ہے پیچھے, اب اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ میرے بچے کس حال میں ہیں, نہیں میرے بچے کس. ایک انسان ان کی کفالت کر لیتا ہے حدیث کے مطابق کہ ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر, اچھے سے لک آفٹر کیا آپ نے اللہ کے راستے میں جانے والے کی فیملی کی, تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا. اب بہت سارے مرتبہ کہتے ہیں نا کہ بھائی بیویاں یہ شکایت کرتی ہے کہ بھائی ہمارے شوہر جماعت میں چلے جاتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, لیکن تو آپ اگر آپ کی بیویاں اگر بچوں کی کفالت کر رہی ہے, ان کی حفاظت کر رہی ہے, تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا شوہر کو چلا لگانے کا ثواب ملے گا. یہ حدیث ہی کہہ رہی نا کہ مجاہد اگر اللہ کے راستے میں گیا ہے, اس کی گھر کی کفالت آپ نے کی, تو آپ کو اتنا ہی ثواب مل رہا ہے, جتنی ایسی کفالت کرے گا انسان کو اتنا ہی ثواب ملے گا. تو اسی سے ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بھائی جو بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہو, جو بھی کوئی اچھا کام, آپ کو لگے بھائی اچھا کام کر رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی وہ فائنینشل سٹرگل کر رہا ہے, तो अगर आप उसकी फैमिली की लुक आफ्टर कर लोगे तो उसकी नेकियों में आपको इतना ही सवाब मिलेगा। हदीस से हमको ये मिलता है। तो हदीस, आज की हदीस हमको ये सिखाती है कि भाई वताअवनु अलल बिर्री वत्तक्वा, नेकी में अच्छे कामों में एक दूसरे की क्या करनी चाहिए भाई, मदद करनी चाहिए। अच्छे काम छोड़ के जाएं और आगे करने वाले करते रहेंगे, इंशाल्लाह उसका सवाब हमको क्या होता रहेगा, मिलता रहेगा। अल्लाह ताला मुझे फिर हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब करे। दूसरे पर जल्लाह سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا حبيبنا محمد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا رب. أستغفر الله.